ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి. తీన్ బార్ ఓం శాంతి బోల్నే సే కౌన్ యాద్ ఆతా హై? క్యా అర్థ బతాయా థా? ఆర్ ముజే క్యా కర్నా హై? అగర్ యే దో రియలైజేషన్ ఆ జాయే కి మై కౌన్ హూ ఔర్ మేరా కౌన్ హై, తో ఆజ్ జో సుబహ బాబా నే కహా చెహరే పర్ క్యా ఆ జాయేగా? ఖుషీ ఆ జాయేగి, ఖుష్నుమా చెహరా బన్ జాయేగా. జబ్ యే రియలైజేషన్ హో కి మై కౌన్ హూ ఔర్ మేరా కౌన్ హై, హమారే అందర్ హిమ్మత్ ఔర్ స్పిరిట్, వో జోష్ వో దమ్ హమారే మే ఆ జాయేగా. బాబా కా జ్ఞాన్, బాబా నే కహా నా బడీ మధురతా సే ఔర్ స్పష్టతా సే కహనా. అగర్ వో నిశ్చయ నశా లగన్ సే నహీ బోలేంగే తో లోగ్ సమజ్ నహీ పాయేంగే. హమ్ కహేంగే భగవాన్ ఆయే హై, పర్ వో హిమ్మత్ వో స్పిరిట్ నహీ హోగా తో వో సమ్జేంగే కి ఆయా హోగా కోయి భగవాన్ భాయ్, హా? క్యోంకి నశే సే నహీ కహా నా, నిశ్చయ సే నహీ కహా. భగవాన్ ఆయా హై యే బోలే తో చెహరా చమక్ ఉఠనా చాహియే. బాబా కహతే నా, తుమ్ జబ్ జ్ఞాన్ దేతే హో తో వో తుమ్హారే చెహరే కో దేఖతే. కుంభకర్ణ కే చిత్ర పర్ సమ్జాతే హై నా కి महाविनाश सामने खड़ा है, तो बाबा कहते उस समय वो तुम्हारे चेहरे को देखते हैं कि विनाश की बात करने वाले के चेहरे पर कितना वैराग्य दिखाई देता है. जब वो वैराग्य नहीं दिखता है तो वो करवट बदल कर फिर सो जाते हैं. క్యోకి వినాశ్ కి బాత్ కర్నే వాలే కే చెహరే పర్ తో కిత్నా వైరాగ్య చాహియే. తో హమ్ సబ్ జాంతే హై కి డ్రామా మే 5000 వర్ష్ కి ఖేల్ కా సర్వశ్రేష్ఠ సంగమ్ యుగ్ చల్ రహా హై. ప్రాక్టికల్ భాగవత్ కా సమయ చల్ రహా హై. వో తో భాగవత్ శాస్త్ర పఢ్తే హై సునతే హై కి కృష్ణ కి మురళీ కే పీచే గోప గోపియా కితనీ పాగల్ థీ, దీవానీ థీ. పతి నా కరే, ఘర్ మే సాస్ నా కరే, బచ్చా రోతా హో, చూలే పర్ భోజన చఢాయా హో, పర్ మురళీ కా నాద సునతే హీ గోపియా భాగ్తీ థీ. ఇత్నీ దీవానీ థీ. తో యే గాయన్ తో కిస్కా హై? హమారా గాయన్ హై. అప్నే ఆప్ మే దేఖనా హై కి వో దీవానాపన్ హై. वो दीवानापन चाहिए, ये तो निश्चय है ना कि प्रैक्टिकल भागवत का ये समय है, स्वयं भगवान कार्य कर रहे, दुनिया नहीं जानती, उनको पहचानने का तीसरा नेत्र नहीं है। हमें वो तीसरा नेत्र है, हमने साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया ना, साधारण तन में बाबा आए। अगर माध्यम चमत्कारी होता तो लोग माध्यम में ही फंस जाते। भगवान को पहचानने की कौन मेहनत करेगा? तो बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता। भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से होती है ना। बाबा कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा कोई देखने की चीजें नहीं, विवेक से समझने की बातें, जानना है पहचानना है। और हम सबका अनुभव है कि जैसे ही बाबा का सत्य ज्ञान मिला, हमें वो स्मृतियां आ गई, हमारा विवेक जग गया, हमारे में परख शक्ति आ गई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आधी भूलें पाप इंसान इसलिए कर देता है कि परख नहीं सकते, समझ नहीं। बाबा की सबसे बड़ी देन है कि बाबा ने सत्य ज्ञान हमें दिया। आदि मध्यांत को हमने जान लिया, आलोक परलोक को भी जान लिया। दुनिया इन मूल सनातन सत्यों को नहीं जानती है, और न जानने के कारण आधा कल्प भक्ति की, पर सत्य न जानने के कारण भटकते रहे। कोई न कोई गुरुओं में फंस गए, कोई न कोई धर्म संप्रदाय में फंस गए। तो कितनी बड़ी चीज बाबा ने हमें दी है। कई बार बाबा के बच्चे सोचते हैं कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही सुनाते हैं, बाबा और भी कुछ दे देते, थोड़ा धन दे देते, जमीन दे देते, कोई साधन दे देते। परंतु नहीं, जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति जो है वो सद्बुद्धि की है, क्योंकि कदम कदम पर हमें डिसीजन लेने होते हैं, निर्णय करने होते हैं। ये व्यक्ति, ये बात, ये परिस्थिति राइट है या नहीं, ये परखना और निर्णय करना ये बहुत आवश्यक चीज है। इसलिए अगर सद्बुद्धि नहीं तो धोखा खाते हैं, टाइम मनी एनर्जी वेस्ट होते हैं, व्यक्ति को डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरों से पूछना पड़ता है। कहते हैं ना, जो मूड मती होते हैं वो दूसरों से पूछते रहते हैं, वो खुद निर्णय नहीं ले पाते। तो रोज सुबह मुरली क्लास में बाबा हमें क्या देते हैं? सद्बुद्धि देते हैं। भगवान सुबह सुबह अकल बांटते हैं। कहते हैं ना, भगवान जब अकल बांटने आए तो कहाँ गए थे? सो गए थे क्या? तो ये किस समय की बात है? ये संगम के समय की बात है। संगम युग वैसे भी अमृत वेला है ना? पूरा संगम युग अमृत वेला है। सतयुग सवेरा, त्रेता दोपहर, द्वापर शाम, कलयुग रात। तो संगम क्या हुआ? अमृत वेला। और उसमें भी रोज सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट का समय। बस फिर सारा दिन कर्म क्षेत्र पर कितने भी कामकाज करेंगे, बातें आएंगी, पर सुबह सुबह जो मन बुद्धि को शुद्ध बना लिया और शक्तिशाली बना लिया, तो सारा दिन सहज, हर बात को सहज पार कर सकेंगे। क्योंकि बाबा तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि हमें देते हैं। उस सद्ज्ञान का, क्योंकि हर बात बाबा सिर्फ सुनाते नहीं हैं, समझाते हैं, है ना? बाबा कहते हैं ना, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। समझा बाबा ऐसे पूछते हैं ना? जब सही बात समझ में आ जाती है तो आत्मा को खुशी होती है। इसलिए विवेकपूर्ण आनंद का अनुभव संगम युग में होता है। आज तो दुनिया में गंदी भ्रष्ट बातों का आनंद लेते हैं। फिल्मों में क्या देखते हैं? सीरियल्स देखते हैं, हर बात में गंदी भद्दी बातों का आनंद लेते हैं। कोई किसी को पीड़ा दे करके आनंद लेते, कोई किसी का शोषण करके आनंद लेते, कोई भ्रष्टाचार करके आनंद ले, गलत कर्मों से, गलत तरीकों से, गलत साधनों से आनंद लेते। देखते हो ना दुनिया को, बॉम्बे में तो बहुत दिखाई देता है। बाबा तो कहते हैं ना, बॉम्बे क्या है? चारों ओर दिखाई देता है ना माया। तो वैराग्य आता है। कपड़े कैसे पहनते, खाना कैसे खाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं और क्या क्या चाल चलते हैं, कर्म करते हैं। बाबा ने हमें कहा, हमारे मींस एंड वेज, हमारे साधन भी शुद्ध, तरीका भी शुद्ध। तो सबसे पहली खुशी आनंद सत्य ज्ञान का है। जो भक्ति में कहते शिव का डमरू डमडम बाजे, अगम निगम के भेद खोले, वो अभी खुलते हैं। सारे राज बाबा ने हमें बता दिए। देखो, साकार मुरलियों में प्रकट प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन की छोटी मोटी हर बात बाबा सिखाते। आज बाबा ने देखा ना क्या सिखा है, बोलना कैसे, चेहरा कैसा। तैतीस वर्ष साकार मुरलियों के माध्यम से जीवन की प्रैक्टिकल हर बात बाबा ने सिखाई। हमें सच्चा ब्राह्मण, सच्चा मानव बनाए। लोग कहते हैं ना मानव मानव बने तो भी बहुत है, वो सच्चा मानव बाबा के बच्चे, पवित्र योगी जीवन है और दिव्य गुणों की धारणा है। एक क्षण अगर आप शांति से सोचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा ने ना समझाई। इतना बाबा ने नॉलेजफुल, नॉलेजेबल, इतना सेंसिबल बाबा ने हमें बनाया। अगर मुरली का हम अच्छा अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन में कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं। कंफ्यूज वही होता है जिनका पक्का निश्चय नहीं, जिन्होंने सत्य को परखा नहीं। कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, फिर शरीर की बीमारी हो, परिवार के कोई हिसाब हो, या नौकरी धंधे में कोई बातें हो, प्रकृति की कोई बातें हो, हम अचल अडोल रह सकते हैं। आप सबका भी अनुभव होगा, बात आई नहीं और बुद्धि में सॉल्यूशन आ जाता है, समाधान आ जाता है। तो ऐसे सद्ज्ञान का आनंद जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, कर सकता है, क्वालिटी मास्टर है, तो उसको अपने अंदर में खुशी रहती कि मैंने ऐसा वैसा नहीं पढ़ा है, मास्टरी है मेरी। अपने आप कितना मान शान स्थान उनको मिलता है, किस आधार पर? नॉलेज, स्टडी। बाबा ने साधारण शब्दों में मूल सत्य बातें कही, इसलिए मुरली साधारण नहीं है। बाबा के बच्चे, दुनिया के लोकलाज, कलयुगी कुल मर्यादाओं को छोड़ के बाबा के बन जाते हैं। कितनी माताएं मार खाती है, कितनी कन्याओं पर सितम होते, कितने भाइयों को बंधन आते, पर बाबा को हम नहीं छोड़ते। जिसको ज्ञान का चटका लग गया उसको कोई बाबा से जुदा नहीं कर सकते। तो कोई चीजें नहीं, वस्तुएं नहीं, व्यक्ति नहीं, परंतु ज्ञान, सद्बुद्धि आनंद देती है। वो आनंद बाबा कहते हैं ना, सिर्फ निश्चय नहीं, नशा। जब निश्चय है तो नशा आ जाता है। कौन पढ़ाता है, क्या हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या हम बनने वाले हैं। देखते हो ना मुरली में बाबा को किन किन बातों का नशा है। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ निश्चय नशा लगन दिखता है ना मुरली में। आज भी बाबा ने कहा ना कौन मंथन करता है, ब्रह्मा बाबा मंथन करते हैं, उनको नशा है, तभी इतने विघ्नों का सामना किया। और आज बाप दादा ने, मम्मा ने, दादियों ने और हमारी बड़ी दीदियों ने यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमें तो तैयार माल मिला है ना, हाँ? उन्होंने हड्डियां लगाई, मेहनत की, पर क्योंकि निश्चय था, नशा था। करने वाले को मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि नशा इतना है, भगवान से सुख इतना मिलता है। जैसे नींद का नशा है तो स्वप्न भूल जाते हैं, स्वप्न में क्या क्या देखते हैं, पर नींद गहरी है तो स्वप्न याद नहीं रहते। ऐसे लगन है, नशा है, तो विघ्न महसूस ही नहीं होते। ये आनंद संगम युग में हम अनुभव कर सकते हैं, अपने पवित्र योगी जीवन का आनंद। कितना नाज रहता है अपने आप पर कि हमारा जीवन बाबा ने कितना शुद्ध बनाया। एक क्षण सोचिए, एक क्षण सोचिए, जीवन से अगर ज्ञान और योग माइनस हो जाए तो जीवन क्या है, कुछ भी नहीं, वही दुनियादारी, वही चाल। और ज्ञान योग छूटता है अपने आप बुराइयां आ जाती है, फिर व्यक्ति विकारी व्यसनी बन जाता है। तो बाबा ने हमारा जीवन कितना ऊंचा बनाया, कितनी ऊंची धारणाएं हमारे जीवन में। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। पवित्रता नहीं, ब्राह्मण नहीं। बल सेवा करे, क्लास करे, पर पवित्र नहीं तब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं। तो हमारा ये दिव्य जीवन पवित्रता की धारणा से शुरू होता है। दुनिया तो इस बात को समझती ही नहीं, इतनी ऊंची पवित्रता की धारणा के बारे में कोई सोचता भी नहीं। इतने धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, पवित्रता की बात कोई करता ही नहीं। वंडरफुल है, तो कितनी ऊंची धारणा है बाबा के बच्चों। अन्न शुद्धि, दृढ़ता चाहिए, हर कोई नहीं कर पाता है भाई। कभी कभी उपवास कर लेना सहज है, पर रोज अन्न शुद्धि का नियम रखना ताकत की बात है। रोज अमृत वेले उठना कितनी बड़ी बात है। हाँ, यहाँ जब मेहमानों के प्रोग्राम होते थे तो उनको भी अमृत वेले उठाते थे ना, तो जब बताते थे कि भाई 4 बजे उठने का गीत बजेगा तो कहते अच्छा आधी रात से ही उठ जाना। और हम एक दिन भी अमृत वेला मिस करते हैं तो दिल खाता है कि नहीं, वो समय व्यक्तिगत भगवान से बातचीत करने का समय, दिल की हर बात बाबा को हम बता सकते हैं। बाबा को रिझा सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। वो अमृत वेले की धारणा हम सबके जीवन, रोज मुरली क्लास कर, भाई सोमवार को शिव के मंदिर में चले गए, गुरुवार को गणेश जी के मंदिर में चले गए, वो ठीक है, पर रोज क्लास में जाना और सुबह सुबह जाना, तो बहुत ऊंची धारणाओं से ब्राह्मण जीवन हमारा शुरू होता है। हमें नाज है, खुशी है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना खुशी, छिपाते तो नहीं है ना। निश्चय है, नशा चाहिए, धुन लग जाए, बाबा कहता है। निश्चय बुद्धि है बाबा के सभी बच्चे, पर नशा चाहिए। बाबा कहते हैं ना, वाहरे मैं, ये सुख की बातें, ये आनंद अनुभव करने की बातें। हमारा ब्राह्मण जीवन, बाबा कहता देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि इस जीवन में हम सेवा करते। देवताएं तो सिर्फ अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, खा पी के मौज करेंगे। वो सुख की दुनिया मिलेगी, पर ये यहां हमारा जीवन सफल होता है। हम दूसरों के काम आते हैं, भगवान के साथी मददगार बनते हैं। वही भागवत में गायन है ना, गोवर्धन पर्वत उठाया तो किसने मदद की, हर गोप गोपियों ने अपनी अंगुली दी। हम वो गोप गोपियां हैं, हम अंगुली देते हैं। हरेक बाबा के बच्चे पेट से निकाल कर भी बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं, कि ये यज्ञ चलता रहे, सबका कल्याण होता रहे। कितनी सेवाएं होती है, पवित्र योगी जीवन की पालना यहां होती है। 2 साल मधुबन नहीं आए तो कैसा लग रहा था। तो हमें यज्ञ की कितनी जरूरत है, सेंटर में नहीं आने मिला तो महसूस हुआ ना कि ईश्वरीय परिवार का संगठन कितना जरूरी है। हरेक की लगन, अपनी हिम्मत, अपनी उमंग, अपना चिंतन, अपना एक दो से मदद मिलती है ना हमें, तो हमारे सेंटर्स को चलाना, यज्ञ को चलाना जरूरी है। इसलिए बाबा के बच्चे तन मन धन से, मन वचन कर्म से, समय, संबंध, संपर्क, गुण, कला, विशेषता, हर प्रकार से बाबा के मददगार साथी बनते हैं। जब दूसरों के जीवन बनते हैं तो कितना आनंद होता है, तो सत्कर्म का आनंद, वो सद्ज्ञान का आनंद, सद्बुद्धि का आनंद, सत्य जीवन का आनंद और ये सत्कर्म का आनंद इंटरनल सुख देता है। व्यक्ति केवल खुद खाए पिए मौज करे, उसमें उनकी क्या उपयोगिता है। पर हमारा जीवन दूसरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाए, दुखों से मुक्त करे, क्योंकि जब तक बाबा से नहीं जुड़ेंगे आत्मा दुखों से मुक्त नहीं हो सके। जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी ना बने सुख का अनुभव नहीं कर सके। तो ब्राह्मण जीवन में जितनी सेवा करते हैं खुशी होती है। बाबा कहते हैं हड्डियां लगाओ, हर कर्मेंद्रिय हमारी शुद्ध बनती है। मन से, तन से, धन से, समय से, हर प्रकार से, क्योंकि जानते हैं ये संगम युग सत्कर्म करने की सीजन है। जब कमाई की सीजन होती है तो क्या करते हैं आप, दिन रात लग जाते जानते हैं ना, कमाई की सीजन है, अभी मेहनत कर लो, कमा लो, फिर सारा वर्ष आराम से खाएंगे। अगर सीजन में अलबेले रहे तो सारा वर्ष क्या खाएंगे। तो ये संगम युग सत्कर्म करने की सीजन है। बाबा कहते हैं ना अभी ही जमा की बैंक खुलती है, बाकी तो परम धाम से जैसे ही सतयुग में आएंगे उसी क्षण से उतरती कला शुरू हो जाती, खर्च होना शुरू हो जाता है। तो ये समय कौन सा है और बाबा हमें क्या कहते हैं, बस ये दो बातें ध्यान में रखनी है और सत्कर्म करते जाना है। जितना जमा का खाता उतना व्यक्ति निश्चिंत निर्भय रहता है। देखो कितना भी कोई नुकसान हो जाए, कड़ी बीमारी आ जाए, खर्च आ जाए, पर अच्छा खासा बैंक बैलेंस है तो आपको चिंता नहीं होगी, है ना? आप घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, पता है मेरे पास जमा है, मैं ये खर्च कर सकूंगा। जितना हमारे सत्कर्म जमा होते हैं आत्मा निश्चिंत रहेगी कि मेरा अच्छा किया हुआ मेरे साथ है, वो कहीं जाएगा नहीं। भल पेपर आया है वो हिलेंगे नहीं, निश्चिंत निर्भय रहेंगे कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा की मदद हमें मिलेगी ही। ये निश्चय रहे। और बाबा की याद का आनंद, ये अतीन्द्रिय सुख है सारे, जिसमें इंद्रियों का प्रयोग नहीं, ये अलौकिक आनंद है। आत्मा इंद्रियों से पर होकर ईश्वर की याद में जो आनंद का अनुभव करती है, उसे अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। देखने में हम कुछ भी नहीं करते हैं, योग में बैठते हैं, लोग भी सोचते हैं पता नहीं ये तो चुप चुप बैठते हैं और एक दो को देखते रहते हैं, क्या इनका योग है, कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं, कोई भौतिक साधन नहीं। भक्ति में तो कितनी साधन सामग्री लेते हैं, कितनी क्रियाएं करते हैं, यहां कोई शारीरिक क्रिया नहीं, कोई साधन नहीं। आत्मा मन ही मन बाबा की याद का आनंद लेती है, तो देहभान से न्यारा होने का आनंद, अपने शुद्ध सत्य आत्मा स्वरूप में स्थित होने का आनंद। जैसे ही देहभान से डिटैच होते हैं और अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मा का जो ओरिजिनल सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप है, वो अनुभव में आता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चारों ओर से न्यारा हो जाना है, डिटैचमेंट चाहिए। क्यों योग में बैठते हैं, मन बुद्धि को समेट नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बहुत बातों में अटैच हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, डिटैचमेंट का अभ्यास नहीं रहा। जो कुछ पार्ट प्ले करते गए, घर में पार्ट प्ले किया, ऑफिस में पार्ट प्ले किया, समाज में गए, सारा दिन कितने वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं, पर उन रोल्स को प्ले करने का प्रभाव अंदर भरता ही है, क्योंकि न्यारा होने का अभ्यास ही नहीं। अब बाबा ने हमें योग का पहला अभ्यास न्यारापन का सिखाया। देहभान से न्यारा और अपने स्व स्वरूप में स्थित होना। कितनी बातों में इन्वॉल्व है, वहां से अपने आप को निकालना है। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि ये तुम्हारे रोल्स है, तुम नहीं हो ये। भाई माता का रोल, पिता का रोल, बहन का रोल, भाई का रोल, ऑफिसर का रोल, एम्प्लॉय का रोल, कितने वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं, पर ये रोल्स है, हम वास्तव में आत्मा बाबा के बच्चे हैं। तो अपने आप को जितना आत्माभिमानी हम बनते हैं, सभी प्रभावों से, लेपों से मुक्त होते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए अब देखो हर मुरली में कितनी बार बाबा हमें आत्माभिमानी बनने की बात करते। बाबा कहते आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पर हर कर्म संबंध सब परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, पर आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। आप आत्माभिमानी स्थिति से मिलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हर मिलन मुलाकात को स्पिरिचुअलाइज्ड करो, रूहानी बनाओ, ऐसे नहीं मिलो, आत्माभिमानी स्थिति से मिलना है हरेक। जिस किसी से भी मिले, बात करें, फोन से मिले, सन्मुख मिले, आत्माभिमानी स्थिति से। बाबा ने कमल बनाया, डिटैच किया, इंद्रिय रसों से डिटैच किया, देखने का रस, सुनने का रस, खाने का रस, बोलने का रस, फैशन पहनने का रस, घूमने का रस, इंद्रिय रसों में हम चले गए। अब हम सबका लक्ष्य है इन इंद्रियों के द्वारा देखना है, सुनना है, बोलना है, खाना है, पहनना है, घूमना है, परंतु फंसना नहीं। बाबा कहते ना घूमो फिरो परंतु मुझे याद करो। इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा भूल जाएं ऐसा घूमना नहीं है, ऐसा खाना नहीं है, ऐसा पहनना नहीं है, ऐसा देखना नहीं है, ऐसा सुनना नहीं। कहीं खुश हो जाते हैं, देखो दीदी बाबा ने कहा ना खाओ पियो घूमो फिरो, परंतु नहीं, बाबा को याद करो, मीन्स बाबा भूल जाएं ऐसा स्वाद में नहीं आना है, ऐसी चीजें नहीं देखनी, ऐसी बातें नहीं सुननी, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो बुद्धि शरीर में फंस जाए और चार बार आईने में देखते रहे। जब अच्छे नए कपड़े पहनते हैं तो दो बार ज्यादा देखते हैं ना आईने, तो गई ना बुद्धि। तो बाबा ने क्यों सादा, सात्विक, सरल जीवन क्यों बनाए? ताकि हमारी बुद्धि इंद्रिय रसों में न जाए। हर कर्मेंद्रिय को मुझे कमल बनाना है। देवताओं की महिमा क्या है? मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नैन कमल, हर कर्मेंद्रिय कमल फूल बने। कोई विषयी कर्म मुझे नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं साकार मुरलियों में कितना भी तूफान आ जाए कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं करना। कहते हैं ना बाबा इतना सेल्फ कंट्रोल हूं, और अब तो समय है मनसा में भी तूफान ना, मन में भी गंदगी न रहे। जब पवित्र जीवन जीते हैं तो मन क्यों गंदा रहे? मन में विकारी विचार क्यों आए? मनसा शुद्ध तो मनसा सेवा कर सके। क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट, क्लियर, एक बाबा दूसरा न कोई, अब और कोई नहीं। और जब कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल आएगा तो मन अपने आप शुद्ध होने लगेगा। मुझे नए पाप नहीं करने हैं, किए हुए पाप योग बल से भस्म कर रहे हैं, तो मुझे नए हिसाब किताब नहीं बनाने। इस जीवन में पाप का तो 100 गुना हिसाब बन जाता है ना, इसलिए संगम युगी ब्राह्मण जीवन में इतना ज्ञान गहरा हो, इतना निश्चय नशा हो, बाबा से इतना प्यार और लगन हो कि हम देहभान से ऊपर उठे रहे सदा, शुद्ध विचारों में, श्रेष्ठ ख्यालातों में हमारी बुद्धि इस दुनिया से पार असली घर में, ये अतीन्द्रिय। और जो ये सुख अनुभव करेगा, भगवान की याद का आनंद जो अनुभव करेगा, उससे फिर और कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी, ना उनकी बुद्धि कहीं डूबेगी, ना दृष्टि कहीं डूबेगी। कोई वैभव, कोई सौंदर्य, कोई सत्ता बुद्धि को खींचेगी, इसी का रिजल्ट सतयुग में अपार वैभव, हर कोई सुंदर, फिर भी आत्मा पवित्र निर्विकारी होगी। उसका फाउंडेशन संगम युग में है, अभी वो स्थिति हमें बना। जब आपको ज्ञान और योग में आनंद आएगा, सुख अनुभव करेंगे, तो आप अंत तक पुरुषार्थ कर सकें। जिसमें आनंद नहीं आएगा, वो लंबा समय आप नहीं कर सकेंगे। हमें आनंद आना चाहिए, सत्य का आनंद। तो हमें मेहनत नहीं लगेगी, बाबा कहते हैं ना, मेहनत नहीं लगेगी। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। दुनिया में देहधारियों के पीछे दीवाने हो जाते हैं, क्या क्या कुर्बान कर देते हैं, मां बाप का भी नहीं मानते, घर के पैसे चुरा के ले जाते, गहने उठा के ले जाते हैं उस इंसान के प्यार में, जिससे कोई सुख नहीं मिलना है। न चरित्र है, न गुण है, न शुद्धि है, मर जाते हैं। हमें तो भगवान के पीछे कुर्बान होना है, जो सदा सुख देने वाला है, सदा कल्याणकारी, सदा पावन है, सदा रहम दिल, सदा प्यार का सागर। ऐसे बाबा के पीछे हम दीवाने हैं, उतना हमें सुख और आनंद का अनुभव होता है। तो देखो, कोई सिर्फ नियम से बाबा को याद करते, न बाबा से इतना प्यार है, न समझ है, लगन नहीं। अपने आप को पूछो, भगवान मिल गया फिर भी मुझे क्यों लगन नहीं? लगन मेरी बाबा से ही होनी चाहिए। समझते हो ना, बाबा की याद में ही कल्याण है। बाबा की याद से ही मैं आत्मा पावन और शक्तिशाली बन, तो मेरी मुझे उनकी याद में सुख का अनुभव होना चाहिए, उसके ही आनंद में मुझे रहना। खुद खुद को सिखाना है। बाबा ने हमें बहुत सिखाया, दादियों ने हमें बहुत सिखाया, दीदियों ने हमें सिखाया, अब समय है खुद खुद के पीछे मेहनत करो। अभी भी हम जाग जाएंगे, लगन लग जाएगी, हम अपने आप को संपूर्ण बना सके। तो न पुरुषार्थ लगेगा, न मेहनत लगेगी, नेचुरल योगी जीवन का अनुभव होगा। तो संगम युग में त्याग का आनंद, तपस्या का आनंद, वैराग्य का सुख, सेवा का आनंद, ये सब अलौकिक सुख और आनंद है जो हमें। और तब बाबा कहते हैं अंत में, तुम साक्षी होके विनाश को देख सकेंगे और तुम अपने बाबा की याद के आनंद में रहेंगे। जो मुरली में आता है ना, मीरवा मौत मलू का शिकार, वो मृग हिरण का शिकार होता है, पर शिकारी को तो आनंद होता है। वो तो वो मानवीय आनंद नहीं है, वो क्रूरता है। पर हमें, हम जानते हैं ये महाविनाश आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाला है और सुख की दुनिया को लाने वाला है। हम उस शुभ भावना के आनंद में रहते। तो भट्ठी में साइलेंस में रहते हैं, अपने आप एकांत मिलता है। तो देखो, ये सात्विक आनंद, अलौकिक आनंद मैं अनुभव कर रही हूं, मुझे इसी में डूबना है, गहराई में जाना है और इस सुख का अनुभव करना है। ओम शांति। Thank you.